नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। भारत में 2015-16 से 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। नीति आयोग की सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि इस दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा राजस्थान में गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बैरी ने सोमवार को आयोग की राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या में 9.89% अंक की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई, जो 2015-16 में 24.85% थी और 2019-21 में कम होकर 14.96% रह गई थी। राष्ट्रीय MPI स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के तीन समान रूप से भारित आयामों में अभावों को मापता है। GST जैसे ऐतिहासिक सुधारों और बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर जबरदस्त खर्च से भारत आज दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। ब्रोकरेज कंपनी बर्स्टीन ने सोमवार को नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल पर एक 31 पृष्ठ की रिपोर्ट जारी की, जिसमें ये बात कही गई। बर्न्स्टीन की पीएम मोदी के नेतृत्व का दशक एक लंबी छलांग शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया कि विरासत में संकट में फंसे कई संस्थानों के साथ एक कमजोर अर्थव्यवस्था मिलने के बावजूद ऐतिहासिक सुधारों, महंगाई पर नियंत्रण, वित्तीय समावेशन और डिजिटलीकरण के मोर्चे पर सरकार ने काफी अच्छा काम किया है। रिपोर्ट कहती है, भाग्य रातों रात चमकता है, कुछ के लिए ये किस्मत से होता है और ज्यादातर के लिए वर्षों के प्रयास से। भारत कुछ इसी तरह की कहानी है। इसमें कहा गया कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने कई क्षेत्रों में जबरदस्त प्रगति देखी है। इसमें डिजिटलीकरण, अर्थव्यवस्था को संगठित करना, बेहतर नीतिगत माहौल से विनिर्माण के लिए निवेश आकर्षित करना और बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाना शामिल है। जर्मनी की लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी BMW ग्रुप की कुल बिक्री 2023 की पहली छमाही में सालाना आधार पर 5% बढ़कर 5,867 इकाई पर पहुंच गई। कंपनी ने सोमवार को बयान में ये जानकारी दी। समूह की BMW मोटर राड ब्रांड के तहत प्रीमियम मोटरसाइकिलों की बिक्री भी जनवरी जून के दौरान 50% से अधिक बढ़कर 4,667 इकाई पर पहुंच गई। पहली छमाही में समूह ने BMW ब्रांड वाले 5,476 वाहन बेचे, वहीं मिनी बिक्री की 391 इकाई रही। ये भारत में कंपनी की छमाही बिक्री का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष विक्रम पावाहा ने PTI भाषा से साक्षात्कार में कहा, अंततः लग्जरी कार बाजार बढ़ना शुरू हो गया है, हमारे लिए ये नए मॉडल उतारने की वजह से भी बढ़ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि खाद्य, ऊर्जा, सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की जरूरत है। यहां G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की दो दिन की बैठक में अपने संबोधन में सीतारमण ने कहा कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि अपने दीर्घकालिक औसत से नीचे और असमान बनी हुई है। उन्होंने कहा, हमें इस चुनौतीपूर्ण समय से निपटने के लिए समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की जरूरत है। इस संदर्भ में G20 रूपरेखा पर कार्य समूह ने खाद्य, ऊर्जा, सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से संबंधित व्यापक आर्थिक चुनौतियों से निपटने के मुद्दे को उठाया है। वित्त मंत्री ने कहा, इन मुद्दों से जो नीतिगत सबक सामने आए हैं वे स्पष्ट रूप से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। निजी क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता HDFC बैंक का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की पहली अप्रैल जून तिमाही में 29.13% बढ़कर 12,370.38 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। HDFC बैंक ने हाल ही में अपनी आवास वित्त क्षेत्र की मूल कंपनी HDFC का खुद में विलय किया। इसे पिछले वित्त वर्ष यानी 2022-23 की पहली तिमाही में बैंक ने 9,579.11 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। पिछले जनवरी मार्च की तिमाही में बैंक का शुद्ध लाभ 12,594.47 करोड़ रुपए रहा था। बैंक ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि समीक्षाधीन तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 61,021 करोड़ रुपए पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 44,202 करोड़ रुपए रही थी। सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही का शुद्ध लाभ 78% बढ़कर 418 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। बैंक ने सोमवार को शेयर बाजारों को दी सूचना में कहा कि फंसे कर्ज में कमी और ब्याज आय बढ़ने से उसका मुनाफा बढ़ा है। एक साल पहले की समान तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 235 करोड़ रुपए रहा था। अप्रैल जून तिमाही में बैंक की कुल आय 8,184 करोड़ रुपए रही, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में ये 6,357 करोड़ रुपए गए थी। आलोच्य तिमाही में बैंक द्वारा अर्जित ब्याज साल भर पहले के 5,527 करोड़ रुपए से बढ़कर 7,225 करोड़ रुपए हो गया। चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अप्रैल जून के दूसरे तिमाही में उम्मीद से कम यानी 6.3% रही। विश्लेषकों का अनुमान था कि पिछले साल के समान अवधि में वृद्धि की सुस्त रफ्तार की वजह से चालू अप्रैल जून तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था अधिक तेज गति से बढ़ेगी। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की रफ्तार आगामी महीनों में और घटने की आशंका है। इसकी वजह चीन में उपभोक्ता मांग का कमजोर होना और अन्य अर्थव्यवस्थाओं में चीनी निर्यात की मांग घटना है। सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार चीन की जीडीपी की वृद्धि दर अप्रैल जून में 6.3% रही। इससे पिछले तिमाही में चीन की वृद्धि दर 4.5% रही थी। हालांकि विश्लेषकों का अनुमान था कि जून तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था 7% की दर से बढ़ेगी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।